الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. तो ये जो आयात तिलावत की गई इनका तर्जुमा हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, और खुलासे तफसीर भी पढ़ चुके थे। आरुफ मसाइल हम पढ़ रहे हैं मारुफुल कुरान की जिल्द नंबर 5 से। तो इनमें इन आयात में अल्लाह ताला ने अपनी जो नेमतें हैं उनको निशानियों के तौर पर हमारे सामने प्रेजेंट किया, पेश किया कि हमने रात और दिन ये दो नमूने बनाए, ठीक है, और फिर हमने मिटा दिया रात का नमूना और बना दिया दिन का नमूना। यानी रात और दिन जो है वो इस तरह से आते जाते रहते हैं, और इनको बनाने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर यहाँ पर वजह बयान फरमाई, दो वजूहात यहाँ पर बयान फरमाई। ली का लफ्ज इस्तेमाल करके, ली जिसका मतलब होता है ताके, तब तगु फजलम मिन रब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो, वलितअलमु और ताकि तुम मालूम करो, अदद सिनीन वल हिसाबा, ठीक है, सिनीन यानी बरसों की और की गिनती और हिसाब, ठीक है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने जो है वो यानी हर चीज का एक मकसद बनाया, बगैर मकसद के कोई चीज अल्लाह ताला ने पैदा नहीं फरमाई, और इस पूरे के पूरे निजाम को ना अल्लाह ताला ने एक यानी एक अल्लाह ताला ने इस बल्कि हम लफ्ज निज़ाम इस्तेमाल करते हैं ना कि पूरा का पूरा निज़ाम, तो निज़ाम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों, इसलिए कि ये सब कुछ जो है ना ये एक नज़म में पिरोया हुआ है, नज़म, ठीक है। नज़म जो है ना वो एक जैसे उर्दू में हम पोएम को नज़म कहते हैं, ठीक है, तो पोएम को नज़म क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बेहतरीन इंतज़ाम होता है, एक बड़ा यानी उसके अंदर एक लिरिक्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो एक यानी राइमिंग होती है, हाँ जी जज़ाकअल्लाह, मुनज़्ज़म होती है वो, ठीक है, ये भी लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो अल्लाह ताला ने ये कायनात जो बनाई इसके अंदर एक ऑर्डर है, एक निज़ाम है, ठीक है। तो इसमें ना अल्लाह ताला ने यानी बाकायदा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, कि फलानी चीज़ कितनी होगी, फिर कैसी होगी, उसका क्या असर होगा, उसका क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मौजूद हैं। अब हम बहैसियत इंसान के इन चीज़ों को या तो बिल्कुल नहीं समझ रहे होते हैं, या ये कि अगर हम समझते भी हैं तो काफ़ी सुपरफिशियली, काफ़ी हाई लेवल पे जाकर के हमें बात समझ में आ रही होती है कि जैसे 24 घंटा, ठीक है, अब हमने घंटे का एक निज़ाम जो है वो तरतीब दे दिया, उसके अंदर मिनट्स बना दिए, उसके अंदर जो है वो सेकंड्स बना दिए, ठीक है ना। ये मिनट्स सेकंड्स और ये आवर्स का जो निज़ाम था ये आज से कोई पता नहीं 200-300 साल पहले इस तरह का निज़ाम नहीं था, है ना। मुसलमानों ने वैसे तो घड़ी बनाई थी कोई 700-800 साल पहले शायद बनाई होगी, किसी अपनी किसी यानी अंदलुस की जो सिविलाइजेशन है मुसलमानों की, तो वहाँ कहीं पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि उन्होंने घड़ी का निज़ाम बनाया था, लेकिन उससे पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं थी ना। लेकिन अल्लाह का निजाम तो पहले से बना हुआ है ना, इंसान ने तो खाली इसको कैलकुलेट करने के लिए ये चीजें बनाई हुई हैं, मेजर करने के लिए चीजें बनाई हैं जिनको आलात कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि ये जो इल्मुल आदाद वगैरह, जैसे किस अभी आप में से किसी ने पिछले दिनों आज से सवाल किया था कि जो इल्मुल आदाद जो होता है ना, इनके पीछे लोग पड़े रहते हैं, तो इनके हिसाब से जो है वो नाम रखते हैं, और इनके हिसाब से जो है ना वो जायजे बनाते हैं, और क्या चीज जो है वो अच्छी है, क्या चीज बुरी है ना, इल्मुल आदाद के हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमने उनको ये बात समझाई थी कि भाई अगर कोई चीज सुन्नत के अंदर मौजूद है ना, तो फिर तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कि यानी आदात के जरिए से कैलकुलेट करते रहें कि जी फलानी चीज कैसे करनी चाहिए, फलानी चीज कैसे करनी चाहिए। ठीक है, बट जब नबी अलैहिस्सलाम ने हमें कोई चीज बता दी तो वो सुपरसीड कर जाती है, वो सुपरसीड कर जाती है, वो तरजीह इख्तियार कर जाती है, तरजीह हासिल कर जाती है। ठीक है, तो इस वजह से सुन्नत के अंदर ही हमारे लिए फायदा है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया का जो निजाम है इसके अंदर ये चीजें अमल पैरा नहीं है, ये चीजें अमल पैरा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, ये चीजें अमल पैरा हैं। ठीक है ना, ये निजाम जो है ना, ये जैसे ये इसके अंदर मेजरमेंट्स हैं इस दुनिया के अंदर। ठीक है, तो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो फिर इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा डेल्व करते हैं, बहुत ज्यादा इसकी गहराई के अंदर जाते हैं, और जो चीज भी कोई इंसान गहराई के अंदर जा करके उसमें मेहनत करेगा ना, अल्लाह ताला उस चीज की तफसीलात को उसके ऊपर खोल देते हैं, अल्लाह ताला तफसीलात को उसके ऊपर खोल देते हैं। ठीक है ना, वल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, हमारे बुजुर्ग इसी आयत को इस्तेमाल करते हैं कि इंसान के लिए नहीं है सिवाय उसके जिसके लिए वो मेहनत करे। ठीक है, तो जब इंसान मेहनत करता है तो फिर उसके ऊपर चीजें खुलती हैं, तो भाई उसके ऊपर जो है ये इल्म आदाद वगैरह का जो है ना, ये इल्म भी उसके ऊपर खुलता है। ठीक है, कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसके ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो वो फिर इल्मुल आदात के हिसाब से जो है ना, फिर वो हर चीज को उसी नजर से देखना शुरू कर देते हैं कि भाई वो ठीक चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं, दुनिया के निजाम चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो जो निजाम है ना, वो असबाब के दर्जे में ही है, वो असबाब के दर्जे में ही है। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने ये असबाब बनाए हैं। ठीक है, कि भाई जो यानी बादल होगा, बारिश होगी, ठीक है ना, बादल से ही बारिश होगी। ठीक है, और जो है वो सूरज से ही जो है वो गर्मी होगी, और जो है वो बर्फ से ही जो है वो ठंडक होगी। ठीक है ना, उसी तरीके से फलाना अदद होगा तो ऐसे होगा, फलाना ये होगा तो वैसे, अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम है। लेकिन अल्लाह ताला का की अपनी कुदरत जो है ना, वो उसके ऊपर हावी है। अल्लाह ताला असबाब के जरिए से काम तो करते हैं, लेकिन असबाब बनाने वाले अल्लाह ताला ही है, अल्लाह ताला ही की जात है। ठीक है, तो जो अल्लाह ताला का हुक्म है ना, या अल्लाह ताला की जो कुदरत है ना, वो हर चीज के ऊपर यानी हावी है। ठीक है, तो एक ईमान वाला, दीन वाला इंसान जो है ना, वो इन चीजों की के अंदर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, या पड़ता ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। ठीक है ना, उसको जरूरत नहीं है इन चीजों में पढ़ने की, वो तो अल्लाह ताला का हुक्म देखता है, वो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें देखता है। ठीक है ना, उनसे उसको जो हिदायत मिलती है ना, जो उसको रहनुमाई मिलती है, वो उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। वो फिर ये कैलकुलेशंस और आदाद और इस किस्म की दूसरी बहुत सारी दूसरी साइंसेज हैं, बहुत सारी दूसरी साइंसेज, वो उनके अंदर नहीं पड़ता, वो उनके अंदर नहीं पड़ता। ठीक है ना, कहने का मकसद क्या कि उनकी एग्जिस्टेंस की नफी नहीं हो रही कि वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग हैं ना जिनके जो बेचारे, जिनको जाहिर है तहकीक नहीं होती चीजों की, और हकीकत का नहीं पता होता, और ज्यादा उनके पास इल्म नहीं होता, तो वो ना हर चीज की नफी करना शुरू कर देते हैं, इन द सेंस के वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये चीजें अदम है, मादूम है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है ना, बस जो है वो सब कुछ जो है वो दीन है, और बाकी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, सब कुछ दीन तो है। ठीक है, दीन तो हर चीज के ऊपर कादिर है, कुदरत रखता है, क्योंकि दीन जो है वो अल्लाह ताला का बताया हुआ निजाम है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट जरूर करती हैं। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर फोकियत जो है वो अल्लाह के दीन को हासिल है। ठीक है, ये समझ जो है ना ये काफी अहम है, क्योंकि इसका फिर इंसान की जिंदगी के अंदर आगे इसका असर होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी चीज की एग्जिस्टेंस की नफी कर देते हैं और कल को आपको पता चलता है कि नहीं भी वो एग्जिस्टेंस तो उनकी है, एग्जिस्टेंस उनकी थी, ठीक है, तो फिर जो है ना वो शैतान के लिए दरवाजा खुल जाता है, वो फिर आपको जो है वो दूसरी रूप में ले जाना शुरू कर देता है। तो इस वजह से पूरी पिक्चर हमारे सामने इस तरह से कम से कम हाई लेवल रहनी चाहिए कि भाई ये चीजें एग्जिस्ट जरूर करती हैं, लेकिन अल्लाह का दीन जो है ना वो इन चीजों के ऊपर फौकियत रखता है। और दूसरी चीज ये कि जो शख्स अल्लाह के दीन को छोड़ करके, अल्लाह के दीन को तर्क करके वो इन चीजों के पीछे भागता है ना, तो फिर वो शैतान का आलायकार बन जाता है, वो शैतान का आलायकार बन जाता है, शैतान के लिए बहुत आसान हो जाता है उसको गुमराह करना। अब वो जब इन चीजों का इल्म हासिल कर भी लेता है ना, तो उसके जरिए से फिर वो शर का सबब बन जाता है। ठीक है, लोगों को जो है वो गुमराह करने का सबब बन जाता है, और जो है वो बहुत फिर उसके अंदर से गुमराही फैलती है। बहरहाल ये अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, किसी ने सवाल किया था तो इस वजह से इस तरह की बात निकल आई क्लास में। तो और सामने जो है ना वो अदद सिनीन का लफ्ज भी सुबह अल्लाह आ गया, अदद सिनीन अवल हिसाबा, और सवाल भी किसी ने इसी टॉपिक से रिलेटेड किया था, तो इस वजह से जो है वो आपके सामने बात आ गई। अच्छा, मारुफुल मारुफ मसाइल में से जो हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 456 पर, तो वो हम आगे पढ़ना जारी रखते हैं कि नामे आमाल गले का हार होने का मतलब क्या है। ठीक है, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वो कुल इंसान अल्जमनाहु ताइरहू फी उनुकिही, कि हर इंसान के गर्दन में ना हमने उसकी किस्मत को लटकाया हुआ है। ठीक है, उसके लिए जो तकदीर है वो उसके साथ चिपकी हुई है, गले से लटके का मतलब ये है। तो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह इसके तहत लिखते हैं कि ये है, यानी इसका मतलब ये है कि इंसान किसी जगह किसी हाल में रहे, उसका सहीफा अमल उसके साथ रहता है, उसका अमल लिखा जाता रहता है, जब वो मरता है तो बंद करके रख दिया जाता है। ठीक है, यानी उसका अपना जो नाम है अमाल है ना, जो कि उसके कंधों के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, किरामन कातिबैन जो है वो कंधों के ऊपर होते हैं दाएं और बाएं, तो वो जाहिर हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो रूहानी दुनिया की चीज है। तो जिस तरह बाकी रूहानी दुनिया की चीजें हम अपनी जिस्मानी आंखों से नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते, उसी तरह से वो भी ऐसे ही है। मतलब उसकी मौजूदगी की नफी तो नहीं है ना, मौजूदा तो वो मौजूद तो वो है। ठीक है, अगरचे कि हमें नजर नहीं आ रहा, तो जब वो मरता है तो वो बंद करके रख दिया जाता है, यानी अब मजीद उसके अमाल वो तो नहीं कर सकता, मर गया। ठीक है, तो फरिश्ते जो है वो इसका जो नाम है अमाल है वो बंद कर देते हैं। फिर कयामत के रोज ये सहीफा अमल हर एक के हाथ में दे दिया जाएगा कि खुद पढ़कर खुद ही अपने दिल में ये फैसला कर ले कि वो मुस्तहिक सवाब है या मुस्तहिक अजाब। ठीक है, तो ये जो सहीफा अमल है वो यानी उसके लिए तैयार होता है। ठीक है, अब ये जो हदीस मुबारका भी है ना कि जब इंसान मरता है तो उसके तमाम अमाल जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, सवाए उस नेक औलाद के जो के उसके लिए दुआएं कर रही होती है। ठीक है, तो इसकी काफी तफसील जो है फिर उलमा ने इसके ऊपर लिखी, यानी बयान फरमाई है कि उसके अपने अमाल तो बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपना अब खुद तो अमल नहीं कर सकता ना, लेकिन जो उसने सदकाए जारिया इस दुनिया के अंदर छोड़ा होता है ना, ठीक है, तो वो सदका जारिया जो है वो उसके लिए जमा होता रहता है। दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं उसके लिए, या उसका खुदा हुआ खुदवाया हुआ कोई कुआं है कहीं पर, या उसकी जो है वो लिखी हुई कोई किताब है जिससे कि लोग फायदा हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इसके नाम है अमाल के अंदर जो है ना वो कंटिन्यू होता है। इसके अपने अमाल उसके अंदर लिखे जाने बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इसके अमाल के नतीजे में जो दूसरे लोग अमाल कर रहे होते हैं वो इसके नाम है अमाल के अंदर लिखे जाने का सिलसिला जो है वो खत्म नहीं होता। ठीक है, तो कयामत के दिन तक वो सिलसिला उसका अगर जारी है तो वो रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी सारी की सारी। तो यहाँ पर जो अल्फाज है ना कि जब वो मरता है तो बंद करके रख दिया जाता है, तो इस इन अल्फाज से बजाहिर आपको ये गलतफहमी हो सकती है कि नहीं अब बंद हो गया का मतलब उसके अंदर मजीद कुछ नहीं लिखा जा रहा। ठीक है भाई, ये उर्दू के अल्फाज हैं, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के लिखे हुए अल्फाज हैं, लेकिन जो हदीस मुबारक है उसकी तशरीह, और मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह भी उसी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं कि जो इस बात पे यानी यकीन रखते हैं कि मरने के बाद भी नामे अमाल जो है ना वो उसके अंदर रिकॉर्डिंग चल रही होती है, इसके अपने अमाल की नहीं चल रही होती, लेकिन इसके जो आसार होते हैं इसके अमाल के उनकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो इस वजह से इस जुमले से जो है वो कोई कंफ्यूज ना हो जाए जब इसकी तशरीह कर दी। तो फरमाते हैं कि हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि उस रोज बेपढ़ा आदमी भी नामे आमाल पढ़ देगा। ठीक है, यानी कोई उम्मी होगा, कोई बिल्कुल इलिटरेट होगा, अनलिटरेट होगा, जो भी होगा वो उस दिन उसको अल्लाह ताला ये सलाहियत अता फरमा देंगे कि इस नामे आमाल को वो पढ़ लेगा। इस मौके पर असबहानी ने बरिवायत हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन की रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के रोज बाज लोगों का नामे आमाल जब उनके हाथ में दिया जाएगा वो देखेगा कि उसके बाज आमाल सालेह उसमें लिखे हुए नहीं है। ठीक है, तो वो अर्ज करेगा कि मेरे परवरदिगार इसमें मेरे फना फना अमल दर्ज नहीं है। तो हक तआला की तरफ से जवाब मिलेगा कि हमने उन अमाल को इसलिए मिटा दिया कि तुम लोगों की गीबत किया करते थे। ठीक है, लोगों की गीबत करते थे यानी उनके पीठ पीछे जो है ना वो उनकी ऐसी बुराई करते थे जिस बुराई से उनका कोई फायदा नहीं है बल्कि उनका जो है वो नुकसान हो रहा है। ठीक है, लोगों की नजरों में उनकी यानी इज्जत खराब हो रही है और वो बुरे बन रहे हैं और यानी उनको बेसिकली जो है वो तुम नुकसान पहुंचा रहे हो इस तरह की पीठ पीछे बात करके। ठीक है, तो इसको जो है वो गीबत कहा जाता है, और ऐसी गीबत जो होती है वो आपको पता है कि इंतहाई यानी बड़ा गुनाह कबीरा है। ठीक है, और अब तक यहाँ तक फरमाया कि अलगीबतो अशद्दु मिन ज़िना, अलगीबतो अशद्दु मिन ज़िना। ठीक है, कि ज़िना से भी इंसान को जो है ना वो कुछ दुनियावी लुत्फ मिल रहा होता है, लेकिन गीबत तो जो है ना वो तो यानी कोई फिजिकल लुत्फ भी उसके अंदर नहीं है, बस एक जो है ना वो इंटेलेक्चुअल किस्म का एक इंसान लुत्फ उठा रहा होता है जो कि फिजिकल लुत्फ से भी उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो इससे जो है ना फिर उसके गुनाह मिटा दिए, उसके उसके नेक अमाल मिटा दिए जाते। क्या मतलब कि उसके नेक अमाल जो है वो जिसकी उसने गीबत की थी उसको दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसी के दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत से ऐसे अमाल उसको मिलेंगे जो उसने नहीं किए होंगे, तो वो पूछेगा भाई ये अमाल तो मैंने किए ही नहीं थे, तो भाई वो ये तुम्हारे औलादों ने किए थे, ये तुम्हारे जो है ना सदका जारिया के नतीजे में अमाल है जो कि तुम्हारे नामे अमाल के अंदर लिखे गए हैं, अगरचे कि तुमने खुद नहीं किए थे ये वाले अमाल। क्या कुरान पढ़कर बख्शना सदका जारिया है? सदका जारिया का मफहूम आप समझ ही नहीं है कि सदका जारिया क्या होता है। ठीक है, तो आपका सवाल ही गलत है। सही, आपका सवाल जो है ना वो ये होना चाहिए कि क्या कुरान पढ़कर किसी मरे हुए शख्स को बख्शा जा सकता है या नहीं बख्शा जा सकता है, ये आपका सवाल होना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये बिल्कुल बख्शा जा सकता है। बख्शा जाने का मतलब ये होता है कि दिल के अंदर ये नियत रखी जाए कि अल्लाह जो कुरान पढ़ने का सवाब आप मुझे अता फरमा रहे हैं तो वही सवाब जो है ना वो फलाने मरहूम को भी अता फरमा दीजिए। ये होता है बख्शा जाना। बख्शा जाने का मतलब कोई और नहीं होता कि जैसे आपने किसी के गुनाह बख्श दिए, आप नहीं गुनाह बख्श सकते, हम गुनाह नहीं बख्श सकते, गुनाह बख्शना जो है वो अल्लाह ताला का अमल है, अल्लाह ताला ही किसी को गुनाह बख्श सकते हैं, बख्श सकते हैं। ठीक है, तो कुरान बख्शने का मतलब ये नहीं होता बल्कि उसका मतलब ये होता है कि ईसाले सवाब, सवाब पहुंचा देना किसी को अल्लाह ताला से दुआ करके, या अल्लाह ये सवाब उनको पहुंचा देना। ठीक है, सदका जारिया का मतलब ये होता है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में कोई ऐसा अमल करे कि जिसका के सवाब उसके मरने के बाद भी जारी रहे। ठीक है, मरने के बाद भी जारी रहे, तो इसका कुरान पढ़ने से इसका क्या ताल्लुक है? इसका ये ताल्लुक है कि अगर उसने कुरान मजीद की कोई कॉपी फॉर एग्जाम्पल किसी मस्जिद में रखवा दी, ठीक है, तो अब वो जो इसने अपने पैसे से खरीद करके कुरान मजीद की कॉपी मस्जिद में रखवाई है, तो अब मस्जिद में कोई आ रहा है और वो कुरान मजीद की उस कॉपी से कुरान मजीद पढ़ रहा है जबकि रखवाने वाला शख्स मर चुका है, ठीक है। तो वो जो कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है ना मस्जिद के अंदर, तो उसका जो सवाब है वो इसको इसकी कब्र के अंदर पहुंच रहा है, पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो वो कुरान मजीद जो इसने मस्जिद में रखवाया था, ये इसके लिए सदका जारिया हो गया। सदका जारिया यानी ऐसा सदका जो कि मरने के बाद भी जारी है, ठीक है। फर्स्ट कितने लोग की नियत कर सकते हैं, एक साथ कितने लोगों की नियत कर सकते हैं, एक साथ आप पूरी उम्मत की नियत कर सकते हैं, पूरी दुनिया के ईमान वालों की नियत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, नामे आमाल का गले का हार होने का मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं, तो गीबत की बात भी फिर हो गई, सही। अगर अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाई तो ये सदका जारिया होगा। जी, औलाद तो सबसे बड़ी सदका जारिया तो औलाद ही है, तो उसको कुरान मजीद की जो तालीम दिलवा रहे हैं, तो जब मर जाएंगे तो वो औलाद उस कुरान मजीद के तालीम के ऊपर अमल कर रही होगी, तो उस अमल का सवाब जो है वो मरे हुए वालदैन को मिल रहा होगा, ठीक है। उम्रा भी कर सकते हैं मरहूमीन के लिए, जी उम्रा भी कर सकते हैं मरहूमीन के लिए, हज भी कर सकते हैं मरहूमीन के लिए, ठीक है। बहैसियत रसूल के बगैर अजाब ना होने की तशरीह। अच्छा चले आगे चलते हैं कि फरमाते हैं, इस आयत की बिना पर बाज आइम्मा फुकहा के नजदीक उन लोगों को कुफर के बावजूद कोई अजाब नहीं होगा कि जिनके पास किसी नबी और रसूल की दावत नहीं पहुंची, ठीक है ना। इसी आयत की बुनियाद पर कुछ यानी आइम्मा फुकहा यानी बड़े फुकहा, बड़े इल्म रखने वाले लोग, क्योंकि फकीह का जो लफ्ज है ना वो किसी छोटे आलिम के लिए नहीं इस्तेमाल होता, जूनियर आलिम के लिए, बल्कि बड़े उलमा, हत्ता के आइमा का लफ्ज भी हजरत यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इस आयत की बिना पर ये उसूल बेसिकली उन्होंने समझा कि वला तज़िरु वाज़िरतुन, बल्कि नहीं, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, कि हम नहीं अजाब देने वाले हैं हत्ता के हम रसूल भेज रहे हैं, ठीक है। तो जिसके पास रसूल नहीं आया उसको अजाब नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये समझ लें पहला मजहब हो गया, पहली अंडरस्टैंडिंग हो गई, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए लफ्ज मजहब इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि मसलक भी इस्तेमाल किया जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, सही है। अच्छा, एक मिनट, आप लोगों को जरा होल्ड करना होगा, इसको पॉज पॉज कर दीजिए रिकॉर्डिंग को, ठीक है। तो पहला मजहब या पहला मसलक हुआ इस अंडरस्टैंडिंग के बारे में, इस आयत के मफहूम के बारे में। अच्छा, दूसरा मसलक बयान फरमा रहे हैं कि बाज आइमा के नजदीक जो इस्लामी अकायद अकल से समझे जा सकते हैं, मसलन खुदा का वजूद, उसकी तौहीद वगैरह, बस जो लोग उसके मुनकर होंगे उनको कुफर पर अजाब होगा अगरचे उनको किसी नबी व रसूल की दावत नहीं पहुंची, ठीक है। तो कुछ चीजें ना, ये मतलब जो दूसरा मसला है वो इस बुनियाद पर है कि अल्लाह ताला ने अपने वजूद और अपनी तौहीद के वो एक ही खालिक है, एक ही मालिक है और एक ही इबादत के लायक है, ये एक ऐसी चीज है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में गूंद करके इंसान को पैदा किया है दुनिया में, ठीक है। तो ये भी बाकायदा एक कुरान मजीद की आयत की तफसीर ही से इन उलमा ने इस बात को समझा कि फतरन फितरतुल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, ठीक है, कि अल्लाह ताला की फितरत, के अल्लाह ताला ने जिस फितरत के ऊपर इंसान को तख्लीक किया है, ठीक है। तो ये फितरत जो है ना वो यही है कि इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह की पहचान मौजूद है, और पहचान क्या है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला एक, ठीक है। क्योंकि किसी चीज की पहचान जो होती है वो गलत नहीं होती, आप जैसे अपने बच्चे को पहचानते हैं, ठीक है, तो आप अपने बच्चे को क्या गलत पहचानते हैं कि वो जैसे नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला दुनिया के अंदर इस वक्त ये गलाजत फैलाई हुई है कि है तो वो लड़का लेकिन असल में वो लड़की थी, है ना, शी वॉज बॉर्न इन द रॉन्ग बॉडी, ठीक है। तो इस वजह से ना वो थोड़ी बड़ी होती है, तो स्कूल वाले अमेरिका, यूरोप में, कनाडा में, उसको फिर स्कूल वाले जो है ना वो ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम जो है ना जो तुम गलत बॉडी में पैदा हो गई हो, या तुम गलत बॉडी में पैदा हो गए हो, तुम्हें चाहिए कि अपना जेंडर चेंज कर लो, ठीक है। तो वो फिर जेंडर चेंज करने के लिए जो है ना फिर उसका जहन बनाते हैं, हत्ता के उसको जो है वो डॉक्टरों के पास भी ले जाते हैं और उसका जेंडर बाकायदा चेंज करवा भी देते हैं कभी, और वालदेन को पता भी नहीं होता। ये हो रहा है आजकल अमेरिका यूरोप के अंदर, सही है। तो कहने का मकसद तो यहाँ पर यह था कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को पहचानते हैं ना, कम मतलब ये तो नहीं होता कि वो है लड़का लेकिन उसको लड़की समझ रहे हैं, या लड़की है उसको लड़का समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता पहचानने का मतलब। या ये कि वो था तो वो यानी ट्विन था लेकिन ये उसको एक समझ रहे हैं, या वो एक था ये लेकिन ये उसको दो समझ रहे हैं, ये पहचानना तो नहीं होता ना, ठीक है। उसी तरीके से इंसान अपने रब को पहचानता है, का मतलब क्या कि वो रब एक ही है, यही पहचान कहलाएगी। अगर वो उसको दो समझ रहा है या उसको तीन समझ रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि उसने पहचाना ही नहीं अपने रब को, ठीक है। तो ये पहचान जो है ना वो हर इंसान की फितरत में ताना रखी हुई है। तो इसके लिए ना किसी नबी और रसूल की जरूरत नहीं है कि कोई रसूल आके बताएगा कि जी तुम्हारा रब जो है ना वो सिर्फ एक है, या ये कि तुम्हारा रब भी है, तुम बगैर रब के नहीं दुनिया के अंदर पहुंच गए हो, ठीक है। तो किसी रसूल की जरूरत नहीं है इसके लिए। जैसे किसी माँ को जो है ना वो अपने बच्चों को पहचानने के लिए किसी आ, 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 पड़ोसी के आंटी की जरूरत नहीं होती कि आंटी आगे बता रही है कि भाई ये तुम्हारा बच्चा है, भाई माँ को पता है कि वो बच्चा है ना, उसका अपना बच्चा है, ठीक है। उसी तरीके से इंसान को भी पता है कि उसका रब है और एक ही है, ठीक है। तो किसी को आके बताने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर वो इनकार करता है इस हकीकत का, ठीक है, अपनी ख्वाहिशात की वजह से, अपनी जो है वो दुनिया में मगन हो जाने की वजह से वो इस हकीकत का इनकार करता है, तो उसको सजा मिलेगी, कुफर की सजा मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कुफर का मतलब ही होता है इनकार करना, कोई चीज हकीकत है लेकिन उसका इनकार कर रहा है, इसको कहते हैं कुफर, ठीक है। या कोई हकीकत है उसको ये छुपा रहा है, उसको भी कुफर कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा मसलक जो है वो इस आयत की तशरीह में वो क्या हुआ कि नबी और रसूल की दावत ना भी पहुंची हो फिर भी जो है ना वो कुफर का अजाब तो होगा। अलबत्ता आम मासी और गुनाहों पर सजा बगैर दावत व तबलीग अंबिया के नहीं होती, ठीक है। क्या मतलब कि जो तशरीई डिटेल्स हैं कि क्या चीज हलाल है, क्या चीज हराम है, और क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ये डिटेल्स जो है ना ये हर इंसान की फितरत में हर डिटेल मौजूद नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर शराब, शराब हलाल है कि शराब हराम है, ठीक है ना। अब ये बगैर किसी बताने वाले के ये चीज मालूम करना मुश्किल काम है, ठीक है। सच अच्छी चीज है और झूठ बुरी चीज है, ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए रसूल की जरूरत पड़े, ठीक है ना। ये भी अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखा हुआ है कि सच उसको अच्छा लगता है और झूठ उसको बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन जकात जो है वो देनी थी भाई, जकात भी देनी थी और 2.5% देनी थी, ये किसने कहाँ से, ये फितरत में नहीं है कि 2.5% जकात होनी चाहिए, ये फितरत में नहीं है इंसान के, ये रसूल ने ही बताना है और रसूल तो इसके पास पहुंचे नहीं, तो इस वजह से इसको जो है ना वो इस बात पे अजाब नहीं होगा कि इसने जकात क्यों नहीं निकाली, या सही तरीके से कैलकुलेट करके जकात क्यों नहीं निकाली। भाई इसके पास रसूल नहीं आया जिसको जकात के फर्जियत का पता नहीं था, इसको उसकी परसेंटेज का पता नहीं था। नमाजें 5 फर्ज हैं, ठीक है ना, ये 5 नमाजें जो हैं ये फितरत से नहीं पता चलती कि ये अच्छा फजर के वक्त मुझे एक नमाज पढ़नी चाहिए, हर इंसान की फितरत में दाखिल नहीं, ये तो अल्लाह के रसूल ने आकर के बताना है, ठीक है। रसूल अगर नहीं आए, किसी शख्स तक पहुंचा नहीं है, तो उसको फिर नमाज ना पढ़ने का अजाब नहीं होगा, ठीक है, इस तरतीब के ऊपर नमाज ना पढ़ने का अजाब नहीं होगा। हाँ, बस अल्लाह ताला की वहदानियत और शिर्क से अपने आप को बचाना, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया दूसरा दूसरा तफसीर, जहाँ तहारत का इल्म इन्होंने लिखा, क्योंकि आजकल बात चल रही है तहारत की, खसूसन खवातीन के हैज़ व नफास के मसाइल की, तो हैज़ व नफास के मसाइल के बारे में तो भाई लग पता गया है ना कि इसके लिए तो यानी रसूल तो क्या, रसूल के रसूल की भी, यानी उलमा और मुफ्तियान के बताए बगैर जो है वो हैज़ और नफास के मसाइल ही समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, तो अगर कोई औरत जो है वो हैज़ और नफास के मसाइल जिस तक जो है वो बिल्कुल कोई रसूल नहीं पहुंचा, तो फिर उसका हैज़ और नफास के मसलों का भी के ऊपर भी उसको फिर अजाब नहीं होगा। ठीक है, ये फरमाया कि आम मासी और गुनाहों पर सजा बगैर दावत और तबलीग अम्बिया के नहीं होगी। अच्छा, और तीसरा मसला किसके अंदर क्या है कि बाज़ हज़रात ने इस जगह रसूल से मुराद आम ली है, ख्वाह वो रसूल और नबी हो ख्वाह इंसानी अकल, कि वो भी एक हैसियत से अल्लाह का रसूल ही है। ठीक है, तो इंसान की जो एक अकल है वो मेरी यानी मकसद ये कि ये तीसरा जो मसला है ना, ये दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है, वो ऐसे कि खुद रसूल तो नहीं पहुंचा इंसान तक, ठीक है, लेकिन रसूल का मैसेज जो है ना वो किसी और तरीके से उस तक पहुंचा है। ठीक है, और वो जरूरत नहीं है कि कोई कोई इंसान ही हो, बल्कि किसी और तरीके से भी, जैसे कि आजकल बहुत ही आम है कि जी इंटरनेट के जरिए से किसी के पास दीन का इल्म पहुंच गया। अब ना तो रसूल पहुंचे उसके पास, ना रसूल का कोई वारिस यानी उलमा या कोई मुसलमान उस तक दीन का मैसेज लेकर के पहुंचा, बल्कि एक प्रिंटेड चीज उस तक पहुंच गई। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो दीन इस्लाम के बारे में लिखा हुआ था, या जो है वो टेलीविजन की कोई नशरियात पहुंच गई, या जो है वो इंटरनेट का कोई मैसेज पहुंच गया। ठीक है भाई, ये मैसेज ये भी एक रसूल के ही दर्जे में है, और अल्लाह ताला ने उसको अकल दी थी कि भाई ये चीज अब तुम्हारे सामने आ गई है, मैंने पहुंचा दी है तुम तक ये वाला वाली बात, तो अब अपनी अकल को इस्तेमाल करके तुम इसको गौर से पढ़ो, गौर से सुनो, और इसकी बुनियाद पर जो है वो सही दीन को जो है वो इख्तियार कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे रसूल से मुराद जो है ना वो बड़ा बड़ा उमूमी, बड़ा ही वसी कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, सिर्फ जो है वो इंसान नहीं, इंसानी रसूल या इंसानी नबी नहीं, बल्कि अच्छा कुरान मजीद में रसूल का लफ्ज जो है ना वो यानी उनके अलावा जिनके ऊपर वही आती है ना, उनके अलावा भी लोगों के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, यानी जिन जो के सहाबा होते हैं अंबिया के, उनके लिए भी रसूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर उनके अलावा, ठीक है, यानी इंसान रसूल के अलावा कोई भी मेथड के जरिए से पैगाम पहुंच गया हो किसी के पास। तो बहरहाल, तो ये तो तफसील हो गई इस वाली आयत की कि वमा कुन्ना मुअज्जबीन हत्ता नबअस रसूल। ठीक है, अब जो है ना वो इससे पिछली वाली आयत जो है, ठीक है, बल्कि इसी आयत का जो है वो पिछला हिस्सा, ला तजिरु वाजिरतुन विजरा उखरा। ठीक है, तो उसके तहत हजरत ने एक मसला यहाँ पे लिखा कि औलादे मुशरिकीन को अजाब ना होगा। ठीक है, आयत ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र अख़रा के तहत तफसीर मज़हरी में लिखा है कि इस आयत से साबित होता है कि मुशरिकीन व कुफार की औलाद जो बालिग होने से पहले मर जाएं उनको अजाब ना होगा, क्योंकि माँ बाप के कुफर से वो सजा के मुस्तहिक ना होंगे। इस मसले में आइमा फुकाहा के अकवाल मुख्तलिफ हैं, जिनकी तफसीर की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तफसीर जो है वो अवाम उन्नास के लिए लिखी गई है, तो उतनी क्योंकि डिटेल जो है वो उनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ने लिखा। तो इसमें एक तो साफ सी बात, सीधी सी बात तो ये है कि जी जो जो बच्चा पैदा होता है किसी घर के अंदर, तो पैदाइशी तौर पर तो वो मुवाहिद होता है, तौहीद पर होता है, क्योंकि उसकी फितरत में अल्लाह ताला ने तौहीद रखी होती है। ठीक है, लेकिन जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, ठीक है ना, और हमारा मुशाहिदा भी, हर एक का यही मुशाहिदा होता है कि जब कोई हिंदू घराने में पैदा होता है तो उसके माँ बाप जो है ना फिर उसको हिंदू बना देते हैं, जो ईसाई घराने पैदा होता है, यहूदी घराने पैदा होता है, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जो मजूसी घराने के अंदर, ठीक है, तो वो जो है ना जो क्या है वो अल्फाज बकायदा हदीस के, युहव्विदानी ही, वो माँ बाप जो है उसको यहूदी बना देते हैं या उसको मजूसी बना देते हैं या उसको ईसाई बना देते हैं। ठीक है, क्या मतलब कि वो जिस माहौल में पढ़ता बढ़ता है तो माँ बाप उसको उसी अपने ही दीन के ऊपर चलाते हैं, वहीं पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये बालिग होने से पहले मर जाता है ना ये बच्चा, तो इसको जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अहकाम जो है वो अभी तक कोई भी हुक्म इसके ऊपर अभी तक नहीं लगा था, ठीक है। अहकाम में सबसे पहला हुक्म है ईमानदार, अल्लाह ताला के हुक्मों से में से सबसे पहला हुक्म जो इंसान के ऊपर लागू होता है वो ईमान लाना लागू होता है, ठीक है। तो वो बालिग के ऊपर, जब बालिग होता है उसके बाद ये सारा का सारा सिलसिला शुरू होता है, ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही मेजर बात हो गई ना कि काफिर की औलाद जो होती है वो अगर बालिग होने से पहले मर जाए तो उसको कुफर का अजाब नहीं होगा, बल्कि वो कयामत के दिन जो है ना फिर उनको यानी जन्नत के जो है वो क्या कहते हैं गिलमान के तौर पर उनको उठाया जाएगा, और जन्नत के अंदर वो बच्चों की तरह से फिरते होंगे, ठीक है, बच्चों ही की तरह से वो रहेंगे और बच्चों ही की तरह से वो जन्नत के बागों के अंदर फिरते होंगे। अच्छा, बालिग होने से क्या तब्दीलियां आ जाती हैं? बज़ाहिर तो हमें जो नजर आता है वो सिर्फ एक यानी एक फिजिकल तब्दीली होती है कि जिसको कि इह्तिनाम आना कहते हैं, ठीक है, औरत को जो है वो हैज का खून आ जाना ये बालिग होने की निशानी होती है, ठीक है। और मर्द यानी मर्द बच्चा जो होता है उसको इह्तिनाम का हो जाना यानी जिसको बेड वेटरिंग इन द सेंस के सीमन का जो है वो खारिज हो जाना बॉडी में से, ठीक है, तो वो उसके बालिग होने की शरीयत ने इंडिकेशन बताई है, ठीक है। बाकी ये कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कि बिल्कुल ही ये नहीं हो रहा है और उसकी उम्र गुजर रही है, हत्ता कि वो 15 साल का हो जाए ना, तो 15 साल के होने के बाद जो है ना वो बगैर एहतलाम के ही बालिग कहलाएगा, ठीक है। और अगर बगैर उसको यानी और तो बच्ची के अंदर भी शायद 15 साल है या 13 साल या कोई और थोड़ी सी डिफरेंट उम्र है, तो ये हमें हमें सिर्फ बालिग होने की ये इंडिकेशंस पता है, ठीक है। लेकिन बैकड्रॉप के अंदर उसकी फितरत के अंदर और उसकी यानी अकल समझ के अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव तब्दीलियां हो रही होती हैं वो हमें इतनी नहीं पता, हमें उनका भी थोड़ा थोड़ा सा तो पता है, थोड़ा थोड़ा सा तो मुशाहदे के तौर पर, मुशाहदे की बुनियाद पर और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह की बुनियाद पर पता है कि हाँ जी जब बालिग हो रहे होते हैं तो अब तो बहुत कुछ बल्कि खुल गया है कि जो हॉर्मोन्स जो हैं वो भी चेंज हो रहे होते हैं और इसकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो है ना वो मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फलाने बॉडी के अंदर जो है वो बाल भी इस तरह से आने शुरू हो जाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चेंजेस फिजिकल चेंजेस का भी यानी इसके अलावा भी फिजिकल चेंजेस का अब इंसान को इल्म है, ठीक है। उसके मूड स्विंग्स इनके अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं, अब जो है वो इनका भी इल्म हो गया है कि बालिग होने से मूड के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके मजीद और क्या चेंजेस आ रहे होते हैं ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला जिसने के बनाया है इंसान को, ठीक है ना, उसको तो सारी तफसीलात का पता है ना। तो जब अल्लाह ताला ने ये एक उसूल अपने रसूल के जरिए से, ये उसूल रसूल के जरिए से हमें बता दिया कि बालिग होने के बाद अगर वो ईमान नहीं लाता है तो उसको अजाब होगा, ठीक है ना। अब ये अल्लाह का बताया हुआ उसूल है ना जिसने के बनाया, तो अब हम ना अपनी देर जिसको कहते हैं ना देर होशियारी, अपनी छोटी सी अकल, उसकी बुनियाद पर इसको काउंटर करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जी अच्छा बच्चा जो है ना वो तो अभी बेचारा इतना मासूम सा है और वो जो है ना उसको तो अभी कुछ पता ही नहीं है और वो जो है ना अभी एकदम से बालिग हो गया, या बच्ची जो है वो तो जैसे 9 साल में भी बालिग हो सकती है बच्ची, ठीक है ना, और 11 साल की बच्ची वो भी बहुत छोटी हुई होती है, ठीक है। तो अब वो जो है ना जो बालिग हो गई है तो उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसको क्यों अजाब होगा भाई? तो भाई आपको तो नहीं पता ना कि उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, आप अपनी तरफ से क्या फैसला करते फिर रही हैं। अच्छा थोड़ा फिर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कीजिएगा। हो रही है अल्लाह ताला को उन तब्दीलियों का इल्म है और हमें इल्म नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि भाई ये अल्लाह ताला का बताया हुआ एक उसूल है, ठीक है ना, और अल्लाह ताला ही ने इसको जज भी करना है, ठीक है। तो उस बच्चे की जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई हैं, अल्लाह ताला को इस तब्दीली का इल्म है, ठीक है ना। और उसने फिर यानी कुफर किया बालिग होने के बाद या कुफर नहीं किया ये भी अल्लाह ताला को इल्म है, ठीक है, कि उसके दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है कि बजाहिर ऐसा लग रहा हो कि जी अपने माँ बाप के प्रेशर में जो है ना वो एक दीन के ऊपर चल रहा है, ठीक है, लेकिन दिल में उसके इस दीन के खिलाफ नफरत, दिल में उसके इस दीन के खिलाफ नफरत हो और वो उस दीन को हक नहीं समझता हो, लेकिन चर्च जा रहा है या मंदिर जा रहा है, ठीक है ना, क्यों उसके उसके अब्बा उसको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, उसकी अम्मा जो है ना वो उसको अपने साथ लेकर के जा रही है, ठीक है, लेकिन अम्मा दिल तो नहीं बदल सकती ना, अम्मा को दिल का हाल का नहीं पता, अब्बा जो उसको पकड़ के चर्च लेकर के जा रहे हैं अब्बा को दिल का हाल नहीं पता, और अल्लाह ताला और अब्बा जो है वो उसके दिल को तब्दील भी नहीं कर सकते, दिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह को पता है ना, ठीक है, और अजाब किसने देना है, अजाब भी जो है ना ये मसला बताने वाले, ये जो जिसने शरी मसला बताया अल्लाह के रसूल ने बताया ना, कयामत के दिन अजाब किसने देना है, अल्लाह के रसूल ने देना है, नहीं, अल्लाह के रसूल का काम तो है मसला बता देना, शरीयत का इल्म पहुंचा देना, अजाब और सवाब देना ये अल्लाह के रसूल का काम नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का काम है। उसी तरीके से आज के दौर में कोई मौलवी साहब हैं, कोई मुफ्ती साहब हैं, कोई शेख साहब हैं, वो शरीयत का उसूल जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था वो आगे लोगों को बता रहे हैं कि हाँ भी बालिग होने के बाद जो है वो ईमान लाना फर्ज हो जाता है और जो ईमान नहीं लाएगा उसको अजाब होगा। तो भाई मुफ्ती साहब का काम जो है वो सिर्फ मसला बताना है, अजाब देना ये मुफ्ती साहब का काम नहीं है, और ना कयामत के दिन का सवाब देना ये मुफ्ती साहब का काम है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का काम है, ठीक है ना, तो अल्लाह ही जानते भी हैं और अल्लाह ही ने उसके मुताबिक अपना काम भी करना है, ठीक है, तो इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ भी क्या होगा, ये तो बेचारा मासूम था, ये तो बेचारी मासूम थी, और ये तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी, आपको क्या पता, ठीक है, अपने इल्म को जो है वो कामिल समझना और अपने इल्म की बुनियाद पे जो है ना वो किसी एक फर्द के बारे में फैसला कर देना कि जी इसको अदाब होगा या इसको सवाब होगा, है ना, ये तो गलत फहमी है खाली हमारे अपने इल्म के बारे में, और यही मामला जो है ना वो रसूल के पहुंचने वाला भी यही मामला इस पर अप्लाई होता है कि भाई आपको क्या पता कि जो है वो किसी गैर मुस्लिम मुल्क के किसी छोटे से गांव के अंदर जो एक बूढ़ी औरत रहती थी, ठीक है ना, उस तक जो है वो अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचा नहीं पहुंचा, और वो जहन्नुम में जाएगी कि वो जन्नत में जाएगी, आपको क्या पता ये बात, है ना, और आपको कितनी दिक्कतों का सवाब मिलेगा अगर आप उसके बारे में जन्नत का फैसला कर देंगे या अगर आप उसके बारे में जहन्नुम का फैसला कर देंगे, तो आपको कितनी यानी आपको क्या सवाब मिलेगा इसके ऊपर, ये तो आपके करने का काम है ही नहीं, ठीक है ना, कि किसी फर्द के बारे में जो है वो आप जन्नत जहन्नुम का फैसला करें, हत्ता कि कोई चीज बिल्कुल वाजे हो जाए, ठीक है ना, कि उसने जो है वो रसूल के साथ बदतमीजी करी थी, रसूल की मुखालफत करी थी और वो मुखालफत के ऊपर ही उसका इंतकाल हो गया, है ना, अबू जहल जैसे, अबू लहब जैसे, या इस किस्म का कोई और काफिर है, ठीक है ना, तो भाई उसके बारे में भी यानी जिनका हमें हदीस से पता है तो उनके बारे में तो फैसला हो चुका, लेकिन बाकी कभी हमें नहीं पता कि वो सारी जिंदगी रसूल की मुखालफत करता रहा लेकिन मरने से पहले वो ईमान की हालत में मरा कि वो ईमान के बगैर मरा, इसका भी हमें नहीं पता, ठीक है, तो इस बहस में पड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। बाकी आखिरी चीज जो इस टॉपिक के तहत थी वो किसी का सवाल था जो कि उन्होंने शायद पिछली क्लास में किया था या उससे पिछली क्लास में किया था, ठीक है, वो कुछ था माँ बाप और औलाद के आमाल वगैरह से मुताल्लिक, अगर वो मौजूद हैं और उनको याद है कि उन्होंने क्या सवाल किया था तो बराए मेहरबानी अगर वो हमें वो सवाल याद दिला दें, टाइम तो आपकी क्लास का ओवर हो चुका है, एक मिनट। अच्छा, तो
अच्छा,
किसी ने सवाल
तुमने
किया,
सवाल
एको
किया, देखो
कहाँ से शुरू,
देखो,
इनको म्यूट कर दें वरना, ओके, तो सवाल कुछ नौयत का था कि वालदैन अगर औलाद को बुराई की तरफ लेके जाते हैं तो है भाई कोई जिन्होंने सवाल किया था वो है, अगर वो रिपीट कर दें, जैसे कि मुझे बिल्कुल सही तरह याद नहीं आ रहा और खामखा कर अपनी तरफ से मैं सवाल बना करके जवाब देने की कोशिश करूंगा तो फायदा नहीं। खैर हो सकता है वो क्लास में ही नहीं है या वो मजीद सवाल दोबारा नहीं करना चाहती, तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे अपनी क्लास खत्म कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की हम समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।